खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज की घड़ी हम सबको फिर बख्श दी कि हम इकट्ठे हों और उसके कलाम के आईना में उन सच्चाइयों को परखें और खासकर अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को जगह दें, ताकि वो हर तरह के दाग धब्बे और वो अल्ज़ाम जो हमारे मुखालफ की तरफ से है उन सब पर हम गालब आने वाले बने। इसलिए आए हम चंद लम्हों के लिए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें, क्योंकि खुदा रूह है और वो चाहता है कि ज़रूर उसके प्रस्तार उसकी प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करें। तो हम अपने दिलों को, ख्यालात को, सोचों को खुदावंद की तरफ मतवजा करेंगे और उससे उसकी हिकमत और दनाई मांगेंगे। वही हिकमत और दनाई जिससे उसने आदम को बनाया, वही हिकमत दनाई जो उसने दानियल नबी को बख्शी कि वो भेद उस पर अयां किए, वही हिकमत जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है, तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझे पुकारे, मैं बगैर मलामत की इत्यादि के साथ दूंगा। कादर मुतले खुदा, तेरे वादों को याद करते हुए यीशु मसीह के पाक नाम में तेरे हजूर आते हैं। आज हम सबकी रहनुमाई कर, आज जो कुछ भी हम अपने मुखालफ के बारे में सीखें हम सब की रूहानी तरक्की का बायस हो और इस दुनिया में रहते हुए इन सच्चाइयों से अनजान ना बने, बल्कि खुदावंद खुदा अपने आने वाली पुश्तों को भी इन सच्चाइयों के बारे में बयान करें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सबको याद है कि हम उन तीन बड़े दुश्मनों के बारे में सीख रहे हैं जो हमारे मसीही जिंदगी के सफर में हमारे रूहानी दुश्मन हैं। जिस्म यानी कि जिस्म की ख्वाहिशें, पहला दुश्मन दुनिया यानी दुनिया का वो निज़ाम जो अबलीस के मुतहद है, जिसमें वो सिर्फ यही चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो और लोग नूर से हटकर तारीकी की तरफ, सच्चाई से हटकर झूठ और खुदावंद के कलाम को छोड़कर उसकी मनगढ़ंत कहानियों के पीछे चलें। तो दूसरा दुश्मन दुनिया है, तीसरा दुश्मन हमारी रूहानी जिंदगी के सफर में अबलीस है, जिसके बारे में हमने सीखा कल के अबलीस उसे बहुत से मुख्तलिफ नामों में बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है। कल हमने देखा था मत्ती 4 बाप उसकी 5 आयत के मुताबिक उसे अजमाने वाला कहा गया, मत्ती 6 बाप उसकी 13वीं आयत के मुताबिक उससे बुराई या वो शरीर कहा गया है, मत्ती 13:39 के मुताबिक उसे दुश्मन कहा गया है, यूहन्ना 8 बाप उसकी 44वीं आयत के मुताबिक उसे खूनी झूठा झूठ का बाप कहा गया है, मकाशवा 12:12 हमने उसकी 7, 8, और 9 आयत को देखा, वहाँ पर उसे बड़ा अजदहा वो पुराना सांप गुमराह करने वाला और फिर क्या कहते हैं कि झूठ बोलने वाला कहा गया है। और फिर हमने दूसरा करंथियों 4:4 उसकी 4 आयत के मुताबिक देखा था कि अबलीस को इस जहां का खुदा भी कहा गया है, और फिर हमने देखा था दूसरा करंथियों 11:11 उसकी 14वीं आयत के मुताबिक भेष बदलने वाला, बहरूपिया सूरत शक्ल बदल के गुमराह करने वाला। इन नामों को हमने देखा था, आज हम और नाम देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि हमारा मुखालफ अबलीस दुनिया को गुमराह करने वाला, खुदावन खुदा का और नस्ल इंसानी का अजली दुश्मन, उसके तरीक़ेकार, उसकी तजवीज़ों को, उसके क्या कहते हैं कि स्कीमों को, आज उन पर हम गौर करेंगे। इससे पहले कि उन पर गौर करें, चंद एक और नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे मुखालफ के कौन से नाम हैं। आने वाले दिनों में हम हर एक नाम को जानेंगे, उसका मतलब, उसके पीछे जो कहानी है उसमें से और ज्यादा सीखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस हवाला से शुरू किया जाए। मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों उसका 2:2 उसकी 11वीं आयत। जब तक आप वहां पर जाते हैं, दूसरा करंथियों 2:2 उसकी 11 आयत के मुताबिक खुदा का बंदा पालूस रसूल हर एक ईमानदार को चाहता है कि वो इस सच से वाकिफ हों। तो इससे पहले कि हम इस बात को पढ़ें, चंद एक और नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर लिख सकते हैं लिख लें, अगर अबादत के बाद इन नामों को लिखना चाहते हैं तब भी बिला झिझक इनको पूछ सकते हैं, इन हवाला जात को। मत्ती 13 बाप उसकी 19वीं आयत में अबलीस को शरीर कहा गया है, यानी वो शरीर जो कलाम को चुराता है। और जब हम मत्ती 12 बाप उसकी 43वीं आयत को देखते हैं तो उसे नापाक रूह कहा गया है, वो रूह जो बियाबान में भटकती है और इंसानों को गुमराह करती है और दुख जर पहुंचाती है। और जब हम लूका 11 बाप उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर उसे बाल बूज का नाम दिया गया है। ये इब्लीस का लकब है, जिसे का मतलब है गुमराह करने वाला, अल्जाम लगाने वाला। और फिर जब हम यूहन्ना की इंजील 12 बाप उसकी 31वीं आयत, 14 बाप उसकी 30वीं आयत, 16 बाप उसकी 11वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो अबलीस को दुनिया का सरदार कहा गया है। और इसके बाद जब हम इफिसियों 2 बाप उसकी 2 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर अबलीस को पालूस रसूल इस तरह मुखातब कराता है कि हवा की अमलदारी का हाकम, यानी कि हवा में फिजा में जितने भी वो काम होते हैं, बहुत दफा ईमानदारों की दुआओं को रोकने के, बहुत दफा दूसरी आफतें और बहुत से काम हैं जिसके बारे में हम तफसील से देखेंगे। सादा लफ्जों में हवा की अमलदारी के हाकम यानी के फिजा पर जो क्या करता है, कब्जा कंट्रोल करता है। इफिसियों 2 बाप उसकी 2 आयत में। और जब हम देखते हैं इफिसियों 6 बाप उसकी 12वीं आयत में तो अबलीस को कहा गया है दुनिया की तरीकी का हाकम, दुनिया की तरीकी का हाकम। और जब हम कुलसियों 1 बाप उसकी 13वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर उसे तारीकी कहा गया है। और जब हम 1 पत्रस उसका 4 बाप उसकी 8वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर अबलीस को क्या कहा गया है, मुखालफ, अबलीस, शरीर, शेरे बब्बर या फाड़ खाने वाला, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा है कि चोर नहीं आता चुराने बल्कि मार डालने और हलाक करने, उसे हलाक करने वाला भी कहा गया है। और जब हम मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर अबलीस का जो अबरानी नाम है उसे अबदून अबदून कहा गया है, जिसका मतलब है हलाकत, और यूनानी जबान में उसे अपलून कहा गया है, जिसका मतलब है हलाक करने वाला। और इसी बाप में उसे अथागड़े का फरिश्ता भी कहा गया है। और फिर जब हम मकाशवा 12 बाप उसकी 10 आयत को देखते हैं तो वहां पर उसे कहा गया है मसीही ईमानदारों यानी भाइयों पर अल्जाम लगाने वाला, वो खुदा के तख्त के सामने जाकर लोगों पर क्या करता है, अल्जाम लगाता है। इसलिए इन नामों से आपकी वाकिफियत करवाना जरूरी थी। अब देखें दूसरा करंथियों उसका 2 बाप उसकी 11 आयत। पालूस रसूल यहां पर करंथियों की कलीसिया के ईमानदारों को लिखते हुए, ऐसी कलीसिया जो हम जैसी थी, जो खुदा से मोहब्बत भी रखती थी, जो एक वक्त में बुत परस्ती में थी, जो एक वक्त बहुत से दूसरे मसलों में उनका क्या था, पांव था, उनका तरीका कार था, उनका चाल चलन था, उनमें बहुत सी बातें पाई जाती थी जो खुदा को पसंद नहीं थी। उन सब ईमानदारों को लिखते हुए पालूस रसूल कहता है दूसरा करंथियों 2 बाप उसकी 11 आयत में, ताके शैतान का हम पर वार, हम पर दावा ना चले, ताके शैतान का हम पर दावा ना चले, जिसे कह सकते हैं कि दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकफ नहीं हैं। सब मेरे साथ इस आयत को कहें, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकफ नहीं। शुक्रिया। पालूस रसूल सादा लफ्जों में कहता है कि हम ईमानदारों को इस बात से वाकिफ है कि अबलीस का तरीकाकार, उसकी तजवीज़ें और उसकी स्कीमें क्या हैं, ताकि उसका दावा या दाव हम पर ना चले, यानी कि उसका तरीकाकार हम पर काम ना करे। अबलीस को जो एक वक्त में सुबह का सितारा था, कौन था? सुबह का सितारा, जिसका तर्जमा जब लातीनी जबान में किया जाता है तो जिसका तर्जमा क्या निकलता है? लूसीफर। लूसीफर यानी के चमकने वाला, ऐसा अनोखा। सो अबलीस को सुबह का सितारा कहा गया, और उसका काम क्या है? गुमराह करना। उसका काम क्या है? गुमराह करना। इस आरजी दुनिया में, इस फानी दुनिया में अबलीस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदा के तरीकाकार की नकल करना। आज हम शैतान की इस हिकमत अमली को, उसके हीलों को, उसके तरीकों को, उसके झूठों को देखेंगे। इसलिए मेरे साथ अगर कोई लिख सकता है तो लिखे, अगर सुनना चाहते हैं तो बहुत गौर से सुने। खुदावंद यीशु मसीह और फिर शैतान। जब हमने देखा था, आपको याद होगा, यूहन्ना यशायाह 14 बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक, अबलीस की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? मैं खुदा ताला की मानद हूँगा, मैं आसमान पर चढ़ जाऊँगा, मैं आसमान के फरिश्तों पर इख्तियार रखूँगा, मैं दुनिया पर क्या कहता है हुक्मरानी करना चाहता हूँ। और फिर वो क्या चाहता था कि वो खुदा के तख्त पर बैठना चाहता था। खुदावन खुदा के हर निज़ाम की वो क्या करता है? नकल करता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में उसे क्या कहते हैं? नकलिया, बहरूपिया, और खुदा के कलाम और सच्चाइयों की नकल करने वाला। मेरे साथ एक हवाला देखें, दूसरा करंथियों 11 बाप उसकी 3 और 4 आयत, 11 बाप 3 और 4 आयत में पालूस रसूल इस सच को बयान करता है। बाइबल मुकद्दस में हमें यीशु मसीह की खुशखबरी बताई गई है। खुशखबरी क्या है? पालूस रसूल कहता है, पहला करंथियों उसके 15 आयत के मुताबिक, कि खुदावंद यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाता है ये उसके लिए क्या गिनी जाती है? खुशखबरी। सो अबलीस इस खुशखबरी की क्या करता है? नकल करता है। मेरे साथ देखें, पालूस रसूल यहां पर ईमानदारों से क्या कहता है? दूसरा करंथियों 11 बाप उसकी 3 आयत से पालूस रसूल कहता है, लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, मकारी से यानी कि अपनी चालों से, अपने झूठों से, फरेब से, मकारी का काम जो उसने किया, मकारी से हवा को बहकाया, बहकाया यानी कि उसे फरेब दिया, उसे खुदा की तरफ से उसके खुदा के वादों को उन्हें क्या किया, उसने मरोड़ तरोड़ कर बयान किया, हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस, खलूस से मुराद यानी कि वो खलूस जो ऐसी क्या कह सकते हैं कि खलूस के साथ, खलूस का मतलब यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है यानी कि बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, जो तुम्हारी तवज्जो या कह सकते हैं कि रूहानी लगन, उस खलूस और पाक दामनी से यानी कि जो तुम्हारे मुकद्दस अरादे हैं, पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। पालूस कहता है कि मुझे ये डर है कि अबलीस तुमको भी ना बहकाए, ताकि तुम्हारी भी तवज्जो, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी दिल की वो तमाम क्या कहते हैं सरगर्मियां जो खुदा के लिए हैं, उनसे तवज्जो ना हट जाए। क्या लिखा है आगे 4वीं आयत में, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मनादी करता है, किसी दूसरे यस्सु की मनादी करता है। अबलीस का सबसे बड़ा जो दिल का क्या है चाह, जिसे कहते हैं, वो ये है कि वो मसीह का हम शक्ल बनना चाहता है, वो ये है कि वो खुदा का हम शक्ल बनना चाहता है, वो ये है कि वो खुदा के तमाम फरिश्तों पर, तमाम तख्त पर क्या करना चाहता है? बादशाही करना चाहता है। वो चाहता है खुदा की मानद बनना। जरा गौर से कुने क्या लिखा है, क्योंकि जो आता है, आता कौन? यानी कि जो कोई अगर मनादी करने आता है, अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मनादी करे, दूसरे यस्सु से मुराद यानी कि अगर वो अबलीस का पैगाम दे, अबलीस का पैगाम इससे क्या मुराद है? अबलीस की या दूसरे यीशु की मुनादी से क्या मतलब है। यानी कि वो बंदा, वो कादम या वो पैगंबर या वो नबी जो इस बात की तालीम देता है कि यीशु मसीह में निजात नहीं बल्कि दुनिया के अच्छे कामों में, दुनिया की अच्छी बातों में निजात है, वो क्या करता है, दूसरे यीशु की खुशखबरी देता है। क्या लिखा है, किसी दूसरे की मनादी, दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, जिसकी हमने मनादी नहीं की। पालूस रसूल कहता है कि जिसकी मैंने मनादी नहीं की, या मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिली है जो तुमने जो जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी जिसको तुमने कबूल ना किया था तुमको बर्दाश्त करना बजा है। सो इसी आयत में हमें अबलीस के जो क्या कहते हैं कि तरीकाकार, उसकी नकल, उसकी क्या कहते हैं कि झूठ, क्या नजर आता है, दूसरा यसु, यानी कि एक यसु है जिसका नाम क्या कहते हैं कि मसीह है, खुदा का बेटा जो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, सलीब पर मरा, मुर्दों में कब्र में उतारा गया और मुर्दों में से जी उठा। इस यसु के बारे में जो दूसरा यसु है ये कौन है, बहरूपिया है, जो अबलीस की तरफ इशारा किया जाता है, जो बहुत दफ़ा इंसानों को बहकाने के लिए नूरानी फरिश्तों का भी रूप इख्तियार कर लेता है। तो दूसरा यसु किसको कहा गया यहाँ पर, अबलीस को। और फिर क्या कहा गया है, तुमको कोई और रूह मिली हो, अबलीस की रूह क्या करती है, लोगों को गुमराह करती है। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरी खुशखबरी, दूसरी खुशखबरी यानी कि शैतान का एक अपना पैगाम है। शैतान का पैगाम क्या है, मुझको सजदा करो तो दुनिया का हर ऐशो इशरत आराम शानो शौकत इख्तियार तुमको दूंगा। ये अबलीस की खुशखबरी है, तुम्हें खुदा के बेटे की ज़रूरत नहीं बल्कि मुझ पर यकीन रखो। अबलीस की खुशखबरी ये है कि कोई ज़िंदगी नहीं इस ज़िंदगी के बाद, कोई मौत नहीं इस मौत के बाद, तुम्हें इसलिए मसीह और उसके कलाम को कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये वो पहला पैगाम, पहला हिस्सा है जिसमें हम देखते हैं कि खुशखबरी के पैगाम की नकल करना। अबलीस का काम क्या है, खुशखबरी के पैगाम की नकल करना। आगे चलकर हम और देखेंगे। इसलिए आप सब से मेरी यही दरख्वास्त है, दुआ है कि खासकर हमें ईमानदार होते हुए अबलीस के चालों से वाकफ होने की ज़रूरत है, उसके हम दाव पेच में ना आ जाएं। जिस तरह उसने हवा को बहकाया और हवा के वसीला से आदम ने चुनाव किया गुनाह करने का, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक रूह दिया है, उसका कलाम दिया है, इसलिए हमें उसके कलाम की रोशनी में चलने की ज़रूरत है। आइंदा दिनों में हम और देखेंगे इस अबलीस के उस नकली निज़ाम को जो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अबलीस का नकली निज़ाम आगे चलकर हम देखेंगे कि अबलीस के नकली खादम हैं, अबलीस के नकली और झूठे अकीदे हैं। अबलीस ने यीशु मसीह की वो शराकत की मेज़ एक अपनी मेज़ भी बनाई हुई है। अबलीस एक झूठी ज़िंदगी के बारे में बयान करता है। अबलीस अपने आप को खुदा और माबूद भी बयान करता है। अबलीस के झूठे उस्ताद हैं और उसकी झूठी तालीम भी है। आगे चलकर हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए आज इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ। जबूर 119 उसकी 105 आयत, हम ये कह सकते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, ताकि हम शैतान और उसके झूठों और फरेबों के खुदा खुदा हीलों और दाओं में ना आए और ना ही उनसे वाकफ ना वाकफ रहें, बल्कि वाकफ होकर तेरी मर्जी को पूरा करें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।